हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेदांश की कार उसके मेंशन के बड़े गेट के सामने आकर रुक गई। ड्राइवर भी जैसे ही ब्रेक लगाया, वेदांश ने बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाज़ा खोला और भारी कदमों से बाहर निकला। उसका चेहरा मायूसी से लटका हुआ था, आंखें लाल थीं, जैसे अंदर का सारा तूफान थम चुका हो और अब सिर्फ खालीपन बाकी रह गया हो। उसने अपना कोट हाथ में लटका रखा था। वो इतना ज़्यादा कमज़ोर और हेल्पलेस लग रहा था मानो अब उसमें चलने की भी ताकत नहीं बची हो। वो भारी कदमों से चलता हुआ चुपचाप मैंशन के अंदर दाखिल हुआ। मैंशन के अंदर का बड़ा दरवाज़ा खोलते ही वेदांश ने नोटिस किया कि उसके सामने ही उसकी माँ खड़ी थी। कई दिनों से वो उससे नाराज़ थीं। उसकी ज़िद, उसकी मनमानी और लोगों को कंट्रोल करने की आदत उन्हें हमेशा गुस्सा दिलाती थी। लेकिन आज जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को इस तरह से थका हारा हुआ देखा, उनका दिल अचानक किसी अनजाने डर से भर उठा। वेदांश, बेटा, ये कैसी हालत बना रखी है तुमने? उन्होंने धीरे से कहा, आवाज़ में घबराहट थी। वेदांश ने कानों में उनकी आवाज़ पड़ी, लेकिन फिर भी वेदांश ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, बस भारी कदमों से सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ता रहा। क्या हुआ है, कुछ बोलोगे वेदांश? वो उसके पास आ गईं, लेकिन वो चुप रहा। उनकी नज़र उसके पीछे गई, जैसे किसी को ढूंढ रही हों। अंबिका कहाँ है? वेदांश ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। वो सीढ़ियों की तरफ मुड़ा, लेकिन माँ के सवाल पीछे से तीर की तरह आते रहे। कहाँ है अंबिका? तुम उसे अपने साथ लेकर गए थे ना, तो फिर वो तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आई? क्या किया तुमने उसके साथ? वो ठीक तो है ना? कहीं तुमने उसे... वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि वेदांश अचानक पलटा और गुस्से से लेकिन रुंधे हुए गले से चिल्लाया, चली गई। वो चली गई अपनी दुनिया में जहाँ से आई थी। वो कभी मेरी नहीं थी और कभी मेरी दुनिया में रह भी नहीं पाती। आखिर कब तक मैं उसे बांध कर रखता? चली गई माँ, वो चली गई हमेशा के लिए। अब वो कभी नहीं आएगी। तेज आवाज़ में चिल्लाए हुए उसके शब्द वहीं जैसे हवा में तैरते रहे, लेकिन उनके पीछे छिपा दर्द उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। इतना बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर आ गई और अगले ही पल उसके होंठ कांपने लगे। उसने खुद को कंट्रोल करके अपनी आंखें एकदम तसकर बंद कीं और तभी उसके गाल पर आंसू की पहली बूंद गिरी और फिर मानो किसी ने भीतर का बांध तोड़ दिया हो, वो रो पड़ा और रोते रोते वहीं सीढ़ियों के पास बैठ दिया। जिंदगी ने आज पहली बार वेदांश को इस तरह से किसी और के लिए टूट कर रोते देख उसकी माँ को गहरा सदमा लगा। वो कुछ पलों तक वहीं खड़ी रह गईं, जैसे उनके पैरों में जान न हो। उन्होंने अपने मन में धीरे से सोचा, जिस लड़की ने मेरे बेटे को शैतान से इंसान बना दिया, वो इतनी आसानी से उसे छोड़कर नहीं जा सकती। कुछ तो हुआ है, ज़रूर कुछ तो हुआ है। मैं वेदांश को ऐसे नहीं देख सकती। मुझे पता करना होगा और ये तो मुझे कभी नहीं बताएगा कि क्या हुआ है। वेदांश बिना कुछ और कहे ऊपर अपने कमरे में चला गया। सीढ़ियां चढ़ते उसके कदम भारी थे, लेकिन फिर भी वो काफी जल्दी ऊपर आ गया, जैसे वो खुद से भागना चाहता हो। कमरे के अंदर आते ही उसने अपना दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और उसके कमरे का दरवाज़ा जैसे ही बंद हुआ, वेदांश इतनी तेज आवाज़ में अम्बिका उसका नाम लेकर चिल्लाया और पहली चीज़ जो उसके हाथ लगी उसे ज़ोर से दीवार पर दे मारा। कांच टूटने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। उसकी सांसें भारी हो गईं। वो अलमारी की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खोला और वहाँ रखी हर चीज़ को बाहर फेंकने लगा। सबसे पहले अंबिका के कपड़े और उसका सामान निकालकर उसने वहीं ज़मीन पर इधर उधर फेंक दिया। उन सारे सामान के बीच वो भी कमरे के बीच में ज़मीन पर गिरा। एक एक कर उसने अंबिका से जुड़ी हर चीज़ ढूंढ कर यहाँ वहाँ फेंक दी, जैसे कि उससे जुड़ी सारी यादों को वो भूलना चाहता हो और इसके लिए वो सारा सामान हटाना ज़रूरी था। सब ज़मीन पर बिखर गया। क्यों आई थी तुम मेरी ज़िंदगी में? वो बुदबुदाया और साइड टेबल पर रखा एक फ़ोटो फ्रेम उठाकर उसने दीवार पर दे मारा। फ्रेम के साथ कांच बिखर कर उसके पैरों के पास गिरा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी कि टुकड़े उसके हाथ या पैरों को काट रहे हैं। अगली ही पल उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के बड़े शीशे पर पड़ी। वो शीशा जिसमें अंबिका के साथ उसकी अनगिनत यादें कैद थीं, और अभी जैसे ही उसने उसे आईने में देखा, वहाँ पर उसे अंबिका का मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आया और वेदांश शुरू बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने एक भारी परफ्यूम की बोतल उठाई और जोर से मिरर पर फेंक दी। शीशा चकनाचूर हो गया, हजारों टुकड़े फर्श पर फैल गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंबिका के चले जाने के बाद उसकी जिंदगी के टुकड़े हो गए थे। कुछ देर तक वहीं जमीन पर घुटने के बल बैठे रहने के बाद वेदांश वहां से उठा और उसने अपनी साइड की अलमारी खोली, अंदर से विस्की की बोतल निकाली और बिना ग्लास लिए सीधा बोतल से पीने लगा। पहला घूंट निगलते ही उसकी आंखें कसैला स्वाद महसूस करते हुए सिकुड़ गईं, लेकिन वो रुका नहीं। एक के बाद एक लंबे घूंट, जैसे वो शराब नहीं अपने अंदर का जहर निगल रहा हो। कमरे में अब सिर्फ बोतल की ठक ठक और उसकी भारी सांसें थीं। वो फिर से दीवार के सहारे नीचे जमीन पर ही बैठ गया। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कमरे का एक कोना हल्का सा चमकने लगा हो। उसे उस अंधेरे कमरे के कोने में भी एक चमकती हुई सी रोशनी नजर आई। उसने आंखें मिचमिचाई और दोबारा से अपनी आंखें खोली तो वहाँ सामने अंबिका खड़ी थी। वही हल्की नीली रंग साड़ी, वही हल्की मुस्कान और आंखों में वही सच्चाई और प्यार। अंबिका, उसके होठों से निकला लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी आई। वो हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छूना चाहता था लेकिन उंगलियां सिर्फ ठंडी हवा में लहराईं। पल भर में वो उसकी आंखों के सामने से धुंधली होकर गायब हो गई। वेदांत समझ गया ये सब सिर्फ उसका भ्रम था और कुछ नहीं। वो दोबारा वही दीवार से लगकर जमीन पर बैठा और विस्की की बोतल फिर से होठों तक ले आया और अगला घूंट निकलते ही दूसरी तरफ नजर पड़ी। इस बार अंबिका खिड़की के पास खड़ी थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो हौले से मुस्कुरा रही थी, जैसे एक या दो बार उसकी तरफ देखकर अंबिका ने मुस्कुराया था। रुको अंबिका, वेदांश ने कहा और घुटनों के बल बैठते हुए उठकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने करीब कदम बढ़ाया वो फिर गायब हो गई। अब हर कोने में उसे अंबिका नजर आने लगी थी। कभी वो बिस्तर पर बैठी उसकी किताब पढ़ रही होती, कभी अलमारी से कपड़े निकाल रही होती, कभी आईने में बाल सवार रही होती। उसकी हंसी, उसकी खुशबू, उसकी आवाज सब कमरे में गूंज रहे थे। वेदांत से जैसे ही उसे छूने या उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता, हर बार वो उसकी आंखों के सामने से वैसे ही धुआं बनकर गायब हो जाती। नहीं प्लीज, मुझे पागल मत करो, मुझे पता है तुम यहाँ पर नहीं हो। वेदांश ने दोनों हाथों से कसकर अपना सिर पकड़ लिया और तेज आवाज में चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, वो बहुत ज्यादा नशे में था और अंबिका और उससे जुड़ी यादें भूलने के लिए वो एक बार में पूरी बोतल पी चुका था, लेकिन ये सभी जैसे बिल्कुल असर नहीं कर रहा था। जितना वो अंबिका को बुलाने की कोशिश कर रहा था उतना ही वो उसे याद आ रही थी और कमरे के हर कोने में वही उसे नजर आ रही थी, जबकि उसे पता था कि वो यहाँ पर नहीं है। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की और अपने हिडन कैबिनेट से दोबारा एक और बोतल निकालकर उसी तरह फिर से ड्रिंक करने लगा। वो उसे याद नहीं करना चाहता था, लेकिन यादें तो किसी की परवाह नहीं करती। वो याद आती हैं, दिल में चुपती हैं और चली जाती हैं। अंबिका अब उसकी जिंदगी में नहीं बल्कि उसके दिल में समा चुकी थी, जिसे अब दिल से निकालना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। आंखें बंद करने के बाद भी उसे अंबिका का चेहरा ही नजर आ रहा था, इसलिए वो धीरे से बुदबुदाया, तुम शायद कभी मेरी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्यों लग रहा है कि मेरी सब कुछ तुम ही थी। उसकी सांसें भारी हो गईं और दूसरी बोतल भी अब आधी खाली हो चुकी थी।
कमरे का हर हिस्सा अब बिखरा पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ वही थी, अंबिका। और बहुत ज्यादा नशे में वो धीरे धीरे जमीन पर लेट गया। बोतल उसके हाथ से छूट गई और लुढ़क कर कोने में चली गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अंधेरे में, नींद में, सपनों में भी उसे बस एक ही चेहरा दिखता रहा, अंबिका का। उसे भी आज भी पता चला था कि वो उसे इस कदर चाहने लगा था। टू बी कंटिन्यूड, पिछला चैप्टर सैड एंडिंग और एक ओपन एंडिंग के हिसाब से लिखा था हमने, और वहां पर ही कहानी को खत्म कर दिया था। साथ में आप लोगों से सीजन टू के लिए भी बोला था, लेकिन अब मेरा मन नहीं है इस कहानी का सीजन टू लिखने का, इसलिए हम इसके आगे ही कुछ और एपिसोड लिखकर इसे अच्छी तरह से हैप्पी एंडिंग कर देंगे, जो कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। बस आपको कमेंट करना कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी। थैंक यू।